नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया। नीतीश मंत्रिमंडल का खरमास के बाद विस्तार होने की संभावना, मंत्रिमंडल में भाजपा से नए चेहरों को मिल सकती है जगह। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नए कुलपतियों की नियुक्ति की। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिनों में ठंड से मिल सकती है मामूली राहत, न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। श्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है, बल्कि लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में समाहित है।
हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं, और इन सबके साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और जल्द ही प्रवासी भारतीय एयरक्राफ्ट बनाने में मेड इन इंडिया कार्यक्रम में योगदान करेंगे।
आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे।
प्रधानमंत्री ने भारत की युवा आबादी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य जोर देश के युवाओं के कौशल को उन्नत बनाने और उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग करने पर है।
आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल्ड यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए।
नीतीश मंत्रिमंडल का खरमास के बाद विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा से नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वहीं भाजपा के जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उन्हें कम कर कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों के बीच बांटा जाएगा। कई विभागों के मंत्रियों के बदले जाने की भी संभावना है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी।
देखिए, ऐसा है ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है, इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और खरमास के बाद निश्चित रूप से इस पर चर्चा चलेगी। ये तो विस्तार होना ही है और खरमास के बाद इस पर चर्चा भी चलेगी।
फिलहाल बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 30 मंत्री हैं। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अनुसार 36 मंत्री हो सकते हैं। इस हिसाब से मंत्रियों के 6 पद रिक्त हैं। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है। कई राज्यों में पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन बना था वह समाप्त हो गया है।
कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेगा, सवाल उसका नहीं है और यह सवाल गुमराह भी नहीं है। सवाल यह है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है, जो न्याय सम्मत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए।
गौरतलब है कि कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था। बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए आज एनडीए से जदयू के ललन प्रसाद ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में ललन प्रसाद ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर वे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की नियुक्ति की है। राजभवन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संजय कुमार को मुंगेर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। वहीं विवेकानंद सिंह को पूर्णिया विश्वविद्यालय और रविन्द्र कुमार को नालंदा खुला विश्वविद्यालय राजगीर का कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। देश में एचएमपीवी वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एम्स नई दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन विभाग के डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि एचएमपीवी की तुलना कोविड 19 से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब वायरस पुराना है।
ये वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि बाय द एज ऑफ 10 इयर्स बच्चों में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलमोस्ट 100% बच्चों में हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल्स में कोई ऐसे केसेस बढ़े नहीं है जो नॉर्मल इस सिचुएशन में इस साल के इस समय में जो केसेस आते हैं, जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा उस टाइप के पेशेंट्स वही हैं और इनमें मैक्सिमम कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीबी रोग समाप्त करने के लिए जेलों और सुधार संस्थानों में 100 दिन का अभियान शुरू करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने एक पत्र के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच शिविर आयोजित करने और सभी जेलों में टीबी रोग से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री प्रदर्शित करने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के तापमान में इस दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात चौथे दिन प्रदेश के पश्चिमी भाग में आकाश मेघ आच्छादित रहने एवं दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में बहुत हल्की वर्षा की संभावना है।
ठंड को देखते हुए समस्तीपुर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 1 से 8 कक्षा तक के वर्ग संचालन पर 14 जनवरी तक रोक लगा दी है। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों का भी संचालन नहीं होगा। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के अस्थायी जिले महाकुंभ नगर में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ओम अवस्थी ने बताया कि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
तीन 13 जनवरी से शुरू हो रहे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में 45 दिनों में करीब 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को एक बेहतरीन आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले भक्त आसानी से संगम में स्नान कर सके, इसके लिए संगम क्षेत्र के प्रमुख घाटों को नए सिरे से विकसित किया गया है। मेला अधिकारी अभिनव पाठक ने बताया कि संगम तट पर गंगा और यमुना के किनारे 7 पक्के घाट बनाए गए हैं। इनमें गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट, काली घाट, छतनाग घाट समेत यमुना नदी के किला घाट, सरस्वती घाट, मोरी घाट और महेवा घाट शामिल हैं। सभी घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। हर घाट पर डमरू और त्रिशूल जैसे अलग अलग प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं ताकि घाटों को लोग आसानी से पहचान सकें। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा के लिए वॉच टावर भी लगाए गए हैं। सुरक्षित स्नान के लिए वाटर बैरिकेडिंग के साथ जल पुलिस को भी तैनात किया गया है।
महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना स्थित कृषि भवन में मीडिया सेंटर और बिहार कृषि रेडियो का उद्घाटन किया। बिहार कृषि रेडियो के द्वारा किसानों को खेती, मौसम और बाजार से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी।
तो दोस्तों, खेती आज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक विज्ञान बन चुकी है और इस विज्ञान को समझने के लिए आपको चाहिए सही जानकारी सही समय पर। तो आइए इस कार्यक्रम के जरिए हम सब मिलकर बनाते हैं अपनी खेती को और भी आसान और फायदेमंद, और साथ ही सुनाएंगे किसानों की सफलता की कहानियाँ जो आपको देगी नई उम्मीद और नई ऊर्जा।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज जहानाबाद जिले के काको गांव में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाजसेवी लतीफ शमसी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। लतीफ शमसी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदना जताई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद स्थित सच्चिदानंद सिंह महाविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मनोज सिंह के आवास पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की गई। छापेमारी से पहले जांच एजेंसी ने महाविद्यालय से कई कागजात भी जब्त किए। लखीसराय जिले के शहीद जितेंद्र हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों महिलाएं एक पैसेंजर ट्रेन से उतरी थीं, तभी दूसरे ट्रैक पर आ रही हमसफर ट्रेन की चपेट में आ गईं। सुपौल जिले की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में नेपाल के 3 नागरिकों को 2-2 वर्ष कारावास और 20,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशनगंज पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी का पैसा लेकर भागने के मामले में आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया। नीतीश मंत्रिमंडल का खरमास के बाद विस्तार होने की संभावना, मंत्रिमंडल में भाजपा से नए चेहरों को मिल सकती है जगह। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नए कुलपतियों की नियुक्ति की। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिनों में ठंड से मिल सकती है मामूली राहत, न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।